सूरत इन्फितार एक और जहन्नम का मंजर है। क्या होगा उस दिन इंसानों के साथ? पूरी सूरत ऐसे लगता है कि एक आईना है और उसके अंदर से हम क्यामत के मंजर देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ समाउन फतरत वैजल कवा किबन तसरत वैजल बिहार उपजीरत वैजल खुबूर वो सीरत। जब आसमान फट जाएगा, जब तारे बिखर जाएंगे और जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे और जब कब्रें खोल दी जाएंगी, होगा कि इतने कामों के बाद आलिमत नफ्सुम्मा कद्दमत व अखरत। उस दिन हर इंसान को उसका अगला पिछला सब किया धरा मालूम हो जाएगा। आप सोचिए जरा, आप जहां बैठे हुए हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो अभी, क्योंकि अभी तो काम ही नहीं कुछ किया, लेकिन सोचिए एकदम ये छत उधड़े फटने लगे या ऊपर से आसमान भी फटे। फिर आसमान में जो सितारे हैं वो चूके आसमान पे यूं स्ट्रेस्ड है, जब आसमान फटा तो वो सितारे आपस में ढीले हुए, उनके अंदर के एक्सल टूटे तो वो एक दूसरे से हुए खूब जोरदार आवाजें। इतने में आपको लगे वो दरवाजे खुल रहे हैं और चूंके सितारे सूरज खत्म हुए तो अंधेरा भी छा गया और दूर से पानी की आवाजें आ रही हैं, सरलाटे भरता हुआ पानी। पता चला सब समंदरों के बंद खुल गए और अभी सब पानी में आएंगे और साथ ही जमीन हिल रही है। और इतने में आप देखते हैं कि जमीन में से मुर्दे जो है वो भर रहे हैं बाहर और कब्रें फट रही हैं और भरते जा रहे हैं। क्या कैफियत होगी उस वक्त दिल की? किसी भूत बंगले का ये मंजर तो हो सकता है जिसको लोग पैसे देकर जाके देखें, लेकिन जब ये रियल में होगा ना तो अलीमत नफ्सुम्मा कद्दमत वखरत। उस दिन पता चलेगा क्या तुमने प्रायोरिटाइज किया था, कद्दमत के प्रायोरिटाइज जिसको तुमने अपनी जिंदगी में आगे रखा। जैसे इस वक्त हम सब ने कुरान अपने आगे रखा है ना, देखिए कितना करीब है। अगर मैं देखूँ तो मेरा कुरान एक बालिश दूर है मुझसे, आपका भी इतना होगा। इस क्लासरूम में इस कुरान को एक बालिश करीब रखें तो अमली जिंदगी में इसको दूर क्यों कर दें? खुद से सवाल कीजिए, डे टू डे लाइफ में ये कुरान मेरे से कितना करीब है और कितना दूर है? अखरत क्या लीस्ट प्रायोरिटी, मौखरी किया हुआ, पोस्टपोन्ड। हाँ करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। एक सीरीज है हमारे पास, एक बुक भी आपने पढ़ी होगी इंग्लिश की, नाउ और नेवर, डेल कार्नेगी की, आई थिंक सो, कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो दीन के काम, नेकी के काम, अच्छे कामों का करने का एक ही तरीका है, जब मौका आए ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। अब नहीं करूंगी तो कभी भी नहीं करूंगी। और जो डिले करते हैं, मैं उनको पिछले 10 साल से देख रही हूं, अभी तक उनके हालात साजगार हुए ही कोई नहीं और कई तो बेचारे इसी में दुनिया से चले गए। तो जरूरत इस बात की कि हम इसको अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी बनाएं। आप देखिए कोई भी काम करते हैं तो प्लान बनाते हैं कि नहीं? आप सबको पता है कि आपका बच्चा 3-4 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू हो जाता है। सबको पता है मैट्रिक कितने साल में होता है, FSC कितने में होती है, मेडिकल कितने में, सबको सब कुछ पता है। गोल बना के चलते हैं ना तो हो जाता है। दीन सीखते भी है ना तो गोल कोई नहीं है। मेरी अक्सर लोगों से बातचीत रहती है, कहती मैं क्लास लेती हूँ, अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे, कितना? कहती एक पारा पढ़ लिया। मैंने कहा कितनी देर में पढ़ा? 1 साल में। तो मैंने कहा ये बताए 30 पारे कितने साल में होंगे? 30 साल लगेंगे। और अगर होता रहा, मैं कई अपने ऐसे साथियों को जानती हूँ जो कहते हैं क्लास शुरू की थी फिर 7वें पारे पर डिजॉल्व करनी पड़ी, क्या हुआ वो लोग ही ना रहे। देखिए ना 30 साल में तो बच्चा पैदा होकर शादी करके 4 बच्चों की माँ बन जाती है एक औरत, फिर 30 साल लगते हैं। मैसे अगर आपने 20 साल की उम्र में भी कुरान पढ़ना शुरू किया तो 30 साल बाद तो 50 साल की हो जाएंगी, तो आपकी तो सोच ही बदल चुकी होगी। काम कब करना? और उनकी एज भी मुनासिब लग रही थी, कोई इतनी छोटी उम्र नहीं थी। 30 साल बाद कुरान पूरा होगा तो फिर आप इसको दोहरवाएंगी, रिपीट करेंगी, तो 10 साल उसके लगा लें, तो काम कब करना? देखिए इस वक्त हम मुसलमानों को ये पता ही नहीं है कि दीन का काम भी कैसे करना है। पढ़ना बराए पढ़ना, सवाब बराए सवाब, क्लास चल रही, मस्जिद में हल्का हो रहा है, कब से हो रहा है कोई परवाह ही नहीं है। कोई एंडिंग डेट, कोई शुरू की डेट आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। जिस दिन आप आएंगे इस क्लास में, आपका प्लानर आप देखेंगे ना, आप घूम जाएंगे। खड़ी की सुइयां तो छोड़ दीजिए, जहाज के जो कनेक्शन जुड़ते हैं ना, वैसे आपका एक कोर्स डिजाइन होता है अल्लाह के हुक्म से। इतनी एक एक मिनट, एक एक दिन आपका अमानत होता है साथियों के ऊपर। इनको यही सिखाया जाता है कि आपने आने वालों का एक मिनट अगर जाया किया तो, अगर मिसाल है कि 50 या 100 लोग वहां बैठे हैं तो 50 मिनट या 100 मिनट आपने वेस्ट कर दिए अगर आपने क्लास 1 मिनट लेट शुरू की। ये कोई छोटी बात है? दुनिया वाले तो 10 साल अगला भी सिलेबस बना के आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का दिखा दें और लोग उसके लिए साल साल पहले एडमिशन दे दें, तो दीन का कोर्स ऐसे ही हो जाएगा कि आपका दिल चाहे आज चलते हैं तो आके बैठ गए, कितनी प्रेपरेशन है। और अब ये जो आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप तो मुतमईन हो जाएंगे ना, इसके बाद काम जो शुरू होगा इनका, आप देखिएगा एक एक फॉर्म आपका ऐसे कई हाथों में आता है कि आपको तो पता भी नहीं होगा, आप तो ईद के हंगामों में होंगे, लेकिन उनके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। एक एक रूल को मानेंगे तो आप देखिए कि आप साल डेढ़ साल बाद अपने आप को पहचानेंगे नहीं, फिर एक नई शख्सियत आप में उभरे, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। दुआ कीजिए कि हम आज ही जिंदगी में इस दीन को प्रायोरिटाइज कर लें। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ये तो मुझे जुमला ऐसे लगता है जैसे एक दोस्त अपने दोस्त या एक सहेली अपनी सहेली को जब देखती है ना, थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी है आजकल, कोई खुश होकर नहीं बोल रही, तो वो आके कहती है, मेरी दोस्त तुझे मेरे बारे में क्या बदगुमानी हो गई है, लगता है तेरे दिल में मेरे बारे में कुछ है। साफ महसूस होता है ना जब किसी इंसान के दिल में आपके लिए कोई बाल आता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे घर वाले हो सास हो, साफ पता चलता है आज सुबह उठते सास का मूड खराब है, कोई गड़बड़ कर दी मैंने रात को, हो सकता है बाहर एक चम्मच शहद वाली छोड़ दी और उनको गुस्सा आ गया कि ये बहू बड़ी नकारा मिली कि इसने मेरे घर को गंदा कर दिया। मूड पता चलता कि नहीं चलता? कमरे से उतरती बहू को देखकर सास को नहीं पता चलता ये किस मूड से घर से उतर रही है? तो अल्लाह तआला कहते हैं, इंसानों के तो मूड तुम इतनी जल्दी जान लेते हो, कभी तुमने मेरे बारे में भी सोचा? या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान किस चीज ने तुझे अपने रब की तरफ से धोखे में डाल दिया, जिसने तुझे पैदा किया, तुझे निक सुख से दुरुस्त किया, तुझे मुतनासिब बनाया और जिस सूरत में चाहा तुझको जोड़कर तैयार किया। अपनी शक्लों को अल्लाह का तोहफा समझे। देखिए इतने स्टेप्स तो अल्लाह ने नमाज के कुरान में नहीं बताया जितने आपकी मेरी तख्लीक के हैं। पहले बनाया, फिर स्मूथ किया, ये जो स्किन सॉफ्ट है ना, इसको आप कह लीजिए फसवा है, और उंगलियां हाथ कान बराबर है, एक चीज है ये अदलक है। तादील, बच्चे की एक आंख लंबी हो एक छोटी, हम कैसे लगते? इतने प्यार से जब उसने बनाया तो क्या हम उससे प्यार नहीं करेंगे? अल्लाह ताला इंसान को यहाँ ये यकीन दिलाता है कि तुम उसकी कुदरत का शाहकार हो, तुमने उसकी शाने करीमी को कमजोरी समझ लिया, ये धोखा है तुम्हारा कि माफ कर देगा, ये भी धोखे कर देगा माफ, गुनाहों के साथ माफ करेगा, और नेकियों से कुछ नहीं होता, और ऐसी नेकियां कर करके जिंदगियां जीरन कर रहे हैं और बड़े मुश्किल हुक्म दिए। अल्लाह कहते हैं, मेरे से बदगुमान ना हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुमको पैदा किया। लेकिन असल बात है कि कल्ला बल तो कज़्ज़िबूना बिद्दीन, बल्कि असल बात यह कि तुम लोग जजा और सजा को छुटलाते हो। असल मसला तुम्हारा यह है कि तुम्हें मरने के बाद की जजा सजा का यकीन नहीं है, तभी तो तुमने अपनी गर्दनों से अल्लाह की गुलामी का फंदा उतारकर मुआशरे की गुलामी का डाला, नफ्स के गुलाम बन गए, रस्म और रिवाज के गुलाम बन गए, तुमने मेरे बारे में सोचा ही नहीं, हालांकि तुम्हें याद होना चाहिए। और वो क्या, वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, हालांकि तुम पर निगरान मुकर्रर है, ऐसे मुअज़्ज़ज़ कातिब जो तुम्हारे हर फेल को जानते हैं। ये हैं हमारे स्पाइस, किरामन कातिबीन, राइट और लेफ्ट पे फरिश्ते बैठे हुए हैं जो एक एक लफ्ज़ लिखते हैं, जो देखा, जो सुना, जो बोला, जो सोचा, और उसको फिर आगे शक्ल दे दी। एक एक चीज लिखी जा रही है। आप देखिए किसी बिल्डिंग में जाए, वहां कैमरे लगे होते हैं, तो वो लिख देते हैं कि ये बिल्डिंग जो है ये कैमरों के जरिए से वॉच की जा रही है, तो लिहाजा बी केयरफुल। आपको लगे इस रूम में आप आए और यहाँ रिकॉर्डर्स लगे हुए हैं और आपकी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, कैसा कॉन्शियस होंगे हम? तो क्या हमारे पर इससे भी ज्यादा बारीक नजरें नहीं रखी हुई? फिर जो लफ्ज मुझसे निकाले सोच के निकाले, और ये हिफाजत भी करते हैं हमारी भी और हमारे अमाल की। और ये बताएंगे क्या कल क़यामत के दिन, यानी इनके रिकॉर्ड्स की बेस पे होगा क्या? फरमाया यालमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, ये कातिब तुम्हारे हर फेल को जानते हैं, यकीनन नेक लोग उस दिन मजे में होंगे और बेशक बदकार लोग जहन्नुम में जाएंगे, जजा के दिन वो इसमें दाखिल होंगे और इससे हरगिज गायब ना हो सकेंगे। और तुम क्या जानो वो जजा का दिन क्या है? हाँ, तुम्हें क्या खबर कि वो जजा का दिन क्या होगा, यानी तुम्हें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता। ये तो पता है क़यामत आएगी, बट उसकी इंटेंसिटी और उसकी शिद्दत तुम नहीं जानते। तो हम तुमको बताते हैं, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, ये वो दिन होगा जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के लिए, यानी ये वो दिन है जब किसी शख्स के लिए कुछ करना किसी के बस में ना होगा। वल अम्रु यौम इज़िल्लिल्लाह, और मामला फैसला हुक्म इख्तियार कुछ भी कह ले सब का सब अल्लाह का होगा। तब आप और मैं खुद सोच लें कि हम उस दिन के लिए कितने तैयार हैं। छोटी सी सूरत है लेकिन वाकई इंसान को फिक्र डाल देती है। आइए इसकी तिलावत करते हैं मिलके।
إلى السماء فطرت وإلى الكواكب انتثرت وإلى البحار فجرت وإلى القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم
सूरत मुतफ़िफ़ीन। आप यहाँ से देखिए कि नाम से पता चलता है कि नाप तोल की कमी इंसान के लिए इतना बड़ा बवाल बनेगी कि अल्लाह ताला ने कुरान में एक सूरत नाजिल कर दी। मुतफ़िफ़ कहते हैं डंडी मारने वाले को। सिर्फ तराजू हाथ में लेकर ही डंडी नहीं मारी जाती बल्कि इंसानी ताल्लुकात में, रिश्तों में जब इंसान अल्लाह का हक मारे, बंदों का हक मारे, तो उसके लिए सूरत में बहुत बड़ा सबक है कि हक तलफियों से बाज आ जाओ। बाज दफा हमारा चूंकि इख्तियार होता है ना, तो हम खूब लताड़ते हैं। पता है कि अब बहू ने बोलना कोई नहीं तो खूब उसको सुनाएंगे। कभी भी किसी ऐसे इंसान को जो आपके आगे ना बोले, उस पर जुल्म और ज्यादती करते वक्त डरिए और सोचिए कि अगर अल्लाह ने मुझे इस पर पकड़ लिया तो मेरा क्या हाल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ। तबाही है डंडी मारने वालों के लिए जिनका हाल यह कि लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, क्या हक भी पूरे लेते हैं, मोहब्बत भी पूरी लेते हैं, पैसा भी पूरा लेते हैं, यानी अपने हक तो बहुत मांगते हैं लेकिन जब अपनी बारी आए तो फिर किस चीज में पहुंच जाते हैं, फिर कहते हैं हमारी मजबूरियां दिस एंड दैट। और जब इनको नाप कर या तोल कर देते हैं तो इनको घाटा देते हैं। क्या ये लोग नहीं समझते कि एक बड़े दिन जो उठाकर लाए जाने वाले हैं, उस दिन जब के सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। 3 सेकंड तक खुद को भी वहां खड़े करके सोचे कि मेरा क्या हाल होगा। गाड़ी चलाते पुलिस मैन रोक लेना तो हाथ पांव फट जाते हैं। कहीं रोक ले पुलिस वाला या कोई आम बंदा ही रोक ले, कोई अजनबी हो तो आपको रोक ले, कहीं जाते जाते तो आपको फिक्र लग जाती है मैंने कोई गड़बड़ कर दी है तो वहां क्या हाल होगा। उस वक्त जिस वक्त लोग उस रब के सामने खड़े किए जाएंगे कि जिसने उनको इतनी नेमतें दी, वहां तो फिक्र ये लग जाएगी कि अल्लाह अब आज नेमतों का हमसे हिसाब ना मांग ले और जो उसने दिया था उसकी आज हमसे कीमत ना मांग ले। इसीलिए फरमाया यौम यकूमुन नास लिरब्बिल आलमीन, जब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। और ये बहुत बड़ा दिन होगा। कल्ला इन्ना किताब अल फुज्जार लफी सिज्जीन वमा अदराका मा सिज्जीन किताबुम मरकूम। हरगिज नहीं, यकीनन बदकारों का नाम है, आमाल तो कैद खाने के दफ्तर में है और तुम्हें क्या मालूम वो कैद खाने का दफ्तर, वो एक किताब है लिखी हुई। तबाही है उस रोज छुटलाने वालों के लिए जो रोजे जुजा को छुटलाते रहे और इसे नहीं छुटलाता मगर हर वो शख्स जो हद से गुजरने वाला बद अमल है। इसे जब हमारी आयात सुनाई जाती है तो कहता है ये तो अगले वक्तों की कहानी है। हरगिज नहीं, बल्कि दरअसल इन लोगों के दिलों पर इनके बुरे आमाल का जंग चढ़ गया है। रस्टेड हार्ट्स हैं। हरगिज नहीं, बिल यकीन उस रोज जब अपने रब की दीद से महरूम रखे जाएंगे फिर ये जहन्नुम में जा पड़ेंगे। फिर इनसे कहा जाएगा ये वही चीज है जिसे तुम झुटलाया करते थे। अब यहां देखिए इंसान के मरने के साथ ही उसके साथ जो मामला है, सिज्जीन का जिक्र आया तो सिज्जीन कुफार की रूहों को स्टोर करने की जगह और उनके नामे अमाल और बुरे काम करने वालों के जिन्होंने अपनी मर्जी की जिंदगी की, तकजीब की, अल्लाह को ना माना, आयतों को पीछे कर दिया, ओल्ड डेटेड बुक कह दिया, पुरानी बातें कह दिया। अल्लाह ताला कहते हैं मरने के बाद हम जहन्नुम की तहों में एक ऑफिस बनाया हुआ है, वहां जाकर इनके रिकॉर्ड रख देंगे और क्यामत के बाद जब ये निकलेंगे तो इनको पता चल जाएगा। बात कहां से शुरू हुई? मुतफ़िफ़ से। और खत्म कहाँ होती हैं, दिख रही है सिज्जीन के अंदर खड़े उनके नामे अमल जाने से। तो कहने को बात छोटी है लेकिन दिल की ओट में पहाड़ है। डंडी मारने से इंसान ये साबित करता है कि मेरे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं। हकूक में कमी को भी डंडी मारना कहेंगे, इबादात में कमी, नमाजों में कमी, रकतों में कमी, खुशू में कमी, खुदू में कमी। कुरान की ऐसा डंडी क्या मारते हैं कि हम इसको समझना ही नहीं चाहते। मामलात में डंडी, बात बात छोटी छोटी पैसे बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। बच्चे की टिकट सस्ती लेने के लिए उसकी उम्र 12 साल से कम लिखा दी, हालांकि वो 12 से ऊपर था। और ये कोई बहुत बड़ी डंडी नहीं है, 1 किलो में से कोई 1 पाव नहीं निकाल सकता, वो चंद छटांक ही निकालेगा। तो अल्लाह ताला को ये चीज़ नापसंद है कि इंसान ऐसा करे। और जब कौम का हाल ही डंडी मारने का हो, आप अपने ऊपर ले उम्मत वसत बनना चाहते हैं, डंडी का मारते हैं, ऑफिस में बैठे हैं काम नहीं कर रहे, लोग बाहर खिड़की के बाहर खड़े हैं, सर पटखे हैं, गर्मी में उनके पसीने बह रहे हैं, आप अंदर खिड़की बंद करके चाय पी रहे हैं, खुशगपियों में मसरूफ है, आप फोन पे बातें कर रहे हैं, ये डंडियां नहीं। कैसी कौम पे अल्लाह की रहमत आएगी? ऐसे करतूत करने वालों को अल्लाह बचाएगा? छोटे छोटे कामों में हम झूठ बोलें और कहें कि अल्लाह ताला हमारी मदद करे, तो अल्लाह कहते हैं इसका अंजाम तो बुरा है। इसके बरक्स अब दूसरा किरदार, कल्ला इन्ना किताब अलअब्रार लफी इल्लीशीन वमा अदराका मा इल्लीशून किताबुम मरकूम यशहदुहुल मुकर्रबून। हरगिज नहीं, बेशक नेक आदमियों का नाम है अमाल बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में है, और तुम्हें क्या खबर कि वो बुलंद पाया लोगों का दफ्तर एक लिखी हुई किताब जिसकी निगहदाश्त मुकर्रर फरिश्ते करते हैं। नेक लोगों के रिकॉर्ड्स को अल्लाह इतनी इज्जत से रखवाता है कि उसको कोई हाथ ना लगाए, और बहुत खूबसूरत फरिश्ते और मतलब वो बहुत ज्यादा काबिले भरोसा फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं। और उसकी बुनियाद पे होगा क्या, बेशक नेक लोग बड़े मजे में होंगे। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में कर दे। इन्नल अब्रार लफी नईम अलल अराइकी यंजुरून तारिफु फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम। बेशक नेक लोग बड़े मजे में होंगे और ऊंची मसंदों पर बैठे नजारे कर रहे होंगे, इनके चेहरों पर तुम खुशहाली की रौनक महसूस करोगे। जन्नतियों के चेहरों से पता चलेगा कि ये खाते पीते घर के लोग हैं। दुनिया में भी आप देखिए, अमीर घर का बच्चा पता लग ही जाता है, और गरीब है तो पता नहीं बेचारे के कहीं आंखें पी ली हैं तो कहीं नाखनों में जर्दी और सफेदी छाई हुई है। चेहरा बताता है कि आप अंदर से खुश हैं कि नहीं, आप बीमार हैं कि हेल्दी। कोई बीमार शख्स है उसको किसी को ना बताए, उसके चेहरे का पीलापन बता देता है कि समथिंग इज रॉन्ग। और मैं सोचती हूँ कि आज लोगों ने दीन से खुद को काट कर खुशी छीन ली अपनी। चेहरों पर कोई ऐसी चमक को खुशी दिखती नहीं कि जिसको देखकर को कहे हाय काश मैं ऐसा होता। परेशान परेशान दुखी, हर वक्त स्ट्रेस आउट, हर वक्त परेशान फनेटिक, घबराहट पड़ी हुई, ये करना है वो करना है, और बार बार छोटी छोटी चीजों को इतना बोझ बना लेते हैं कि सारी रूहानियां चली गई और हम बैठे खांपते कांपते रहते हैं। आज भी मैंने सुबह ये इनको कहा कि देखिए आज के दिन को बोझ ना समझिए, खुद भी बैठ के सुनिए। और बाहर वालों से मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अपनी अपनी जगहों पर बैठे अपना दिल हाथ में लेकर इस कुरान को सुन रहे हैं, वरना क्या होगा, वो हंगामे करके चले जाएंगे उठ के यहाँ से, कुचला कूदी है ना। जब तक ये कुरान हमारे दिल पे नहीं उतरेगा हम इसको आगे लेकर ही नहीं चलेंगे। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि जिन्होंने जिंदगी भर अपने आप को मुतमईन रखा, आज देखो उनके चेहरों पे चमक कितनी है। नदरतन नहीं, नेमतों की चमक है। युस्कौन मिन रहीकिन मख्तूम, इनको नफीस तरीन सरबन शराब पिलाई जाएगी जिस पर मुश्क की मोहर लगी होगी। जो लोग दूसरों पर बाजी ले जाना चाहते हों वो इस चीज को हासिल करने में बाजी ले जाने की कोशिश करें। चाहते हैं आप किसी को बीट करना? तबीयत तो इंसान के अंदर ये मिजाज है। देखिए हर इंसान के अंदर दूसरों से आगे बढ़ने की ख्वाहिश है। छोटा बच्चा भी आप देखे रहता है, आप एक बच्चे को प्यार करें ना दूसरा फौरन पास आ जाएगा, मुझे भी करें, मुझे क्यों नहीं किया, चाहता ना इंसान। तो अल्लाह कहते हैं चाहते हो कि तुम दूसरों से आगे बढ़ो, यू वॉन्ट टू कम्पीट अदर्स, तो क्या करो, हाईलाइट कर लीजिए। वफी ज़ालिक फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, फिर इस चीज पे बाजी लो जिसको बाजी ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, यानी इस जन्नत को पाओ, छीना चपटी करो, नेकियां ढूंढो, मैं ये काम करूंगी, ये काम मुझे दे दें। अब ये नहीं कि लड़ाई शुरू हो जाए टीम में, लेकिन नजरें चुराने की बजाय काम ढूंढिए। हाँ मुश्किल काम मुझे दे दे क्योंकि इसका अजर बहुत होगा। वह मिजाज हो मिन तस्नीम, और इस शराब में तस्नीम की आमेजिश होगी। ये एक चश्मा है जिसके पानी के साथ मुकर्रब लोग शराब पियेंगे, शराब को मशरूब समझिए, सीधी बात है। लोग शराब लव तो अरबी में शराब पीने की चीज को कहते हैं, मशरूब के मानों में। तो वो चूंकि बहुत खूबसूरत मीठा होगा, जिन लोगों ने दुनिया में वाकई शराब अल्लाह के लिए छोड़ी उनको कहा तुम शराब पी लेना जाके, लेकिन वो ऐसी नहीं होगी जो दुनिया की शराब होती है। तो आइए अपने लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें तस्नीम नाम के झरने से पानी पिलाना। इमेजिन करें एक लंबी बड़ी सी आबशार है, आप जा रहे हैं जा रहे हैं, चमक रहे हैं, कैसे हो रहा सच रहे, देखते देखते एक जगह ऐसे मोतियों की तरह बिखरता हुआ पानी, और कोई आपको कहता है, आपको होता है कि ये सलसबील है। थोड़ी दूर जाते हैं पता चलता है ये तस्नीम है। और याद रखिए ये आला दर्जे वालों को मिलने वाले हैं, आम दर्जों को तो शायद अल्लाह देना चाहे तो कुछ इसे छोटा दर्जे का दे दे। बिल्कुल दुनियाली बात है, जितनी कीमत उतना उतना अच्छा सेटअप, जितना गुड़ उतना मीठा, जितने पैसों का पैकेज ले लें उतना अच्छा होटल मिल जाएगा। अब तो हज और उमरे पे जाते हुए भी लोग कहते हैं होटल कौन सा होगा ये बताओ। एक बच्चा हमारे साथ उमरे पे जो साथी गए थे तो बाद में फीडबैक लिया कि मैंने कहा बेटा आपको वहां सबसे अच्छा क्या लगा, कहने का होटल। तो बात सच थी, होटल ही प्यारा था ज्यादा, क्योंकि अल्लाह का घर तो बन रहा था। तो याद रखिए ये तो एक मासूमियत वाली बात थी ना उसकी, लेकिन अपने ऊपर लेकर सोचे क्या मैंने जन्नत के ख्वाब देखने शुरू किए। और देखे नहीं देखे तो अभी से देखे, हर दिन कोई एक बार जन्नत की कर ले। बाकी रह की बात दुनिया में अल्लाह के दीन को मानना चलना उसके हुक्मों पे लोग माइंड करते हैं तो अगली आयतें आपका दिल ठंडा कर देंगी। हर वो शख्स जिसको लगता है कि अगर मैंने अल्लाह की मर्जी का गेटअप बनाया तो लोग मेरा मजाक करेंगे करेंगे, उसको सुन लीजिए। इन अल्लज़ीन अजरमु कानु मिन अल्लज़ीन आमनु यदहकून वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून। मुजरिम लोग दुनिया में ईमान लाने वालों का मजाक उड़ाते थे और जब इनके पास से गुजरते थे तो आंखें मार मार कर उनकी तरफ इशारे करते थे, अपने घर वालों की तरफ पलटते तो मजे लेते हुए पलटते थे, और जब उन्हें देखते तो कहते, ये हाईलाइट की ये बुली किया जा रहा है मुसलमानों को, इन्नहाउलाइलदाल्लून, ये तो बहके हुए लोग हैं, हालांकि वे इन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए। आज ईमान लाने वाले कुफार पर हंस रहे हैं, मस्तदों पर बैठे हुए इनका हाल देख रहे हैं, और कहा जा रहा है उनसे, हल सुबिवल कुफारु मा कानु यफलून, ये बताओ कि काफिरों को उनकी हरकतों का जो सवाब मिल गया वो काफी है। अल्लाह बिलाल को जन्नत की मस्तदों पर बिठाकर जहन्नुम में जलते उमैया का हाल दिखाएंगे, और फिर बिलाल से पूछेंगे बिलाल बताइए ये जो उमैया को सजा मिली है दैट्स ओके, ये अपनी तबीयत के दिन कभी नहीं चाहता कि किसी को तकलीफ सहे और वो जहन्नुम में जाए, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है कि जालिम को जब मजलूम के सामने सजा मिलती है तो उसको ये तो यकीन आ जाता है ना कि मैं हक पे था। तो अल्लाह जहन्नुम के मंजर दिखाएगा उन मुसलमानों को जिनको लोग दीन पर आने की वजह से बुरा भला कहते थे। क्या कहेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको, माई लग रही हो, लग रही हूँ, फिर व्हाट नेक्स्ट, आप मुझे कह दें कि आप मोनालिजा लग रही हैं तो क्या हुआ, मुझे क्या फर्क पड़ा। देखिए ये सिर्फ माइंड सेट है, सिर्फ माइंड सेट है। जो लोग तारीफ कॉन्शियस होते हैं वो हर वक्त अपने आप को सराहते रहते हैं, और जिनको परवाह, हाँ लग रही हूँ भाई, दाढ़ी रखी 10 साल बड़े लगे तो बड़ा ही तो लग रहा हूँ, छोटा तो नहीं लग रहा। देखिए हर चीज में बड़े लगना चाहते हैं तो दूसरी तरफ क्यों बुरे नहीं हो। जैसे वो किसी ने कहा ना तुम्हें पता बाहर एक शख्स खड़ा गालियां दे रहा है, तो कभी कुछ दे ही रहा है ना, ले तो नहीं रहा। सोच बदल ले लोगों की बातों पे, लोग आपको कुछ कह रहे हैं, लोग कहते हैं लोग आपको देखते हैं, तो भाई लोग तो इतना पैसा लगा के मॉडलिंग करके बाल बना के स्क्रीनों पे जाते हैं, खुदा के लिए हमें देखो तो हमें ऐसे ही देख लो, देख लो जो दिखता है देख लो, खुश हो आप प्रोमिनेंट हो जाएंगे सब में। हाय अगर वहां इतने जॉब में होंगे तो प्रोमिनेंट हो जाएंगे, तो मुबारक हो आपको प्रोमिनेंट हो गए, इसी के लिए तो लोगों ने इतना पैसा खर्च कर दिया कि हमें प्रोमिनेंट हो। लोगों ने सर पे एक पंखा लगा लिया बालों का, कहीं लोगों ने पिंक कलर की लट कर दी, कहीं ऑरेंज कलर के बाल कर दिए, कहीं इतने मोटे मोटे बाल कर दिए कि देखो अल्लाह के लिए मुझे देखो देखो देखो। तो जब आपको बगैर कोशिशों के कोई देख रहा है तो बुरा मानने की क्या बात है, सिर्फ अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाए। देखिए दीनदार होना तमीजदार होना होता है, मोमिन किसी का मजाक नहीं उड़ाता, जबकि काफिर जो होता है ना वो बदतमीज होता है, उसको परवाह नहीं होती इस बात की। अल्लाह ताला कह रहे हैं आज दुनिया में मेरी इताअत तुम्हें मुश्किल लगती है, कल क्यामत के दिन को सामने रख लो, और आज मैं और आप खुद से पूछे आखिरी कील है क्या मैं एम्बेरस्ड मुस्लिम हूं। मैं जब बाहर मुस्लिम बन के जाती हूँ तो क्या मैं आपको अपने यकीन कह सकती हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि इस्लाम का मजाक बनाऊ, लेकिन आप मुझे कोई गेटअप दे दें जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, और आप कहाँ कहते हैं मैं आपके साथ चलूं। यूएनओ मेरा ख्याल है एक बड़ी कंपनी है, यूनाइटेड नेशन, जो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करती है। कोई और भी अब होगी, मुझे तो वही याद है। आप ले चले, इतने एतमाद और इतने सुकून से वहां जाके आपको दिखा दूं कि मेरे कदमों में 19 से 20 की लफ्जिश ना है। आप कहेंगे इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारी नमाजें नहीं देख रहे, रोजे नहीं देख रहे। और वल्लाही, जब मैं किसी मस्जिद की बिखरी हुई चीजों में मेड़ को सफाई करता देखती हूँ, मेरा दिल करता है मैं उसे मुंह छुपा के गुजर जाऊं। इतने डिसऑर्गेनाइज होते हैं मुस्लिम, इतना खाना फेंकते हैं। मैं एक जगह गई तो एक औरत थी और उसके साथ बेटा लग रहा था मुझे उसकी उम्र का, दो नॉन मुस्लिम जो थे मस्जिद में सफाई कर रहे थे, तो किचन में वो दोनों देख रहे थे हमारी चीजों को, इशारों से बातें कर रहे थे। आज हम खुद अपना मजाक उड़ाते हैं, हमें इस चीज का लिहाज ही नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं, कितने लोग हमें देखे। किसी महफिल में जाए ना, और वहां कोई ऐसी बहन आई हो ना, बहन तो नहीं आप उसको कहते खैर से, जिसके साथ कोई लड़ाई चल रही हो, खानदान की औरत, कोई दोस्त सहेली, फिर देखिए जरा आपके जाने के ना, कहते आज वो आएंगे उनको खूब जलाना है, केयरफुल रहना, बात सोच के करना, वो बात पकड़ लेंगी। जब तक अपने आप को मुसलमान होने के नाते नहीं देखेंगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आइए तिलावत सुनते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपने दीन पे फख्र दे दे। बड़ा खूबसूरत दीन दिया, एक शख्स उसको बरहना होना बुरा नहीं लग रहा, तो आपको कवर्ड होना क्यों बुरा लगता है? वो कपड़े पहनने भूल के आ गया, वो भूल गया कि कपड़े भी पहनने, तो उसको कोई शर्म नहीं आ रही, तो आपको किस बात की शर्म है?
بسم الله الرحمن الرحيم
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولسانه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
سورة انشقاق بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وزنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت والقت ما فيها وتخلت وزنت لربها وحقت جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے اور جب زمین پھیلا دی جائے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی کون سب مردے باہر آ جائیں گے جو اعمال کی گواہیاں موجود تھی زمین کے اندر سب باہر آ جائیں گی کوئی چیز بھی اس وقت چھپی نہیں رہے گی امیجن کیجئے اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور جب وہ اپنے رب کی تعمیل کرے گی تو حق یہی ہے کہ وہ اس کی تعمیل کرے تو جب بے جان زمین اتنا کچھ کرے گی اللہ کے حکم سے اور آسمان جو اتنا بڑا ہے وہ اللہ کا حکم مانے گا تو انسان تو اپنے بارے میں سوچ کیا، یا ایھا الانسان انک کادھن الی ربک کدھن فملاقی، بس انسان تو کشن کش اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. 3 سیکنڈ سوچیے. سٹیپ بائی سٹیپ ہم اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں. کدھن کادھن، اردو میں کہتے ہیں نا رد و قدح، نہ بھی جانا چاہیں تو جا رہے ہیں. ہر دن ہم اپنے رب کے قریب جا رہے ہیں، ایک دن میں اور قریب ہوگی اپنے رب سے ملنے میں. اب اگر تو اس سے پیار ہے نا تو خوشی ہوگی. جیسے کسی کو ملنا اور ٹکٹ بک ہو جائے تو دن گنتے ہیں بچے، اچھا اب ادھر، اب نانی کے آنے میں اتنے دن رہ گئے، اب دادی کے آنے میں اتنے دن رہ گئے. ہم اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں نا تو سوچیں گے فملاقی، ایک دن ملاقات کر لو گے. امیجن کریں خود کو اپنے رب کے سامنے، آپ کا رب آپ کے سامنے، اور رب کو ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. بہت خوبصورت ہے اللہ، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو آج دل میں یہ تمنا لے کر جائیں کہ اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتی ہوں. ہاں کون سی چیز ہے جو ملاقات کو خوشگوار کرے گی؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. یہ چیز تو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کرتی ہے، لیکن اس کے برعکس رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. پیٹھ پیچھے کیوں؟ کیونکہ جب اس کو لیفٹ ہینڈ میں دینے کی کوشش کی جائے گی وہ نہیں لے گا، اپنا ہاتھ پیچھے لے جائے گا تو نام اعمال اڑتا ہوا پیچھے جا کے اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. اور پیچھے کی بات اس لیے بھی آئی کہ اس نے دین کو پیچھے ڈالا ہوا تھا، اللہ کی رضا کو لیز پرائرٹی دی ہوئی تھی. تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آنکھ میں جا پڑے گا، اپنے گھر والوں میں مگن تھا. اس کو ہائی لائٹ کرے، انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ تو بس اپنے ہی گھر والوں میں مگن تھا اور اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا ہی نہیں. پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب تو اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا. یہ کون سی مصروفیت ہے گھر والوں کی؟ آج آپ نوٹ کیجئے، مردوں کی نمازیں کیوں جاتی ہیں جماعت کے ساتھ؟ کما رہے ہیں. کس لیے؟ بچوں کے لیے. عورتوں کی نمازیں کیوں قضا ہوتی ہیں؟ گھر میں بھی پڑھتے ہوئے بھی گھر صاف کر رہی تھی، کھانے پکانے میں لگ گئی تھی، بچے آنے والے ہیں. آج دین کی دعوت ملے تو اتنا کچھ سننے کے باوجود کیوں مشکل لگتے ہیں؟ پڑھنا مشکل کیوں ہے؟ گھر متاثر ہوگا، کھانے کا وقت ہے، بچے کو پک کرنا ہے. بس غریب کو کیوں بہانہ بناتے ہیں آپ، جس نے آنا ہی اسکول سے آپ کے بعد ہے؟ اس کھانے کو کیوں فکر کرتے ہیں جو آپ دن میں کبھی بھی پکا سکتے ہیں؟ زندگی کے ایک اصول بنائیں، آپ کے وقت میں بہت برکت بنے گی، بہت برکت پڑے گی وقت میں، کہ جس وقت جس کام کی اہمیت ہے اس وقت وہ کام کریں، باقی کام بعد میں ہو جائیں گے. ہم اکثر اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ، اور ارجنٹ اور امپورٹنٹ، اور ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ، یہ چار خانے بنا لیں اپنی زندگی کے. کوئی کام کریں تو سوچیں اس ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ فوراً کیجیے، ارجنٹ تو ہے امپورٹنٹ نہیں پھر بھی کر لیجیے، امپورٹنٹ ہے ارجنٹ نہیں تھرڈ لیول پہ اس کو لے لیں، اور فورتھ لیول پہ ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ، تو اس میں تمہاری ساری لغویات نکل جائیں گی. ہمارا حال ہے کہ امپورٹنٹ بھی نہیں کرتے ارجنٹ بھی نہیں کرتے، دونوں کو چھوڑ کے ہر وقت بیکار کاموں میں. کھانا پکانا ہے کوئی بڑی بات نہیں، کوئی ضروری ہے کہ آپ ابھی اسی وقت ہی اٹھ کے پکائیں؟ کیونکہ آپ روز اس وقت پکاتی تھی اس لیے پکائیں، آپ 3-4 بجے کے بعد پکائیں، دیکھیں میاں کے آنے پہ گھر کیسے مہک رہا ہوگا کھانے کی خوشبو سے. صرف مینیج کرنے کی بات ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے، آج ہر چیز کے لیے وقت ہے انسان کے پاس، لیکن دین کی بات ہے گھر میں مصروف ہیں، میری فیملی لائف نہ خراب ہو. کتنا کو میاں بیوی بیٹھ کے ایک دوسرے کو گانے سناتے رہتے ہیں سارا دن، کتنے میاں جو بیوی کے بالوں میں پھول سارا دن لگاتے ہیں. آپ گھر میں بھی دن میں رہیں گی تو وہ سوئے ہی ہوں گے، کس کا میاں گھر میں ہوتا ہے دن میں؟ اور ویکینڈ کی بات کر لیجئے تو وہ تو خود کہیں گے تھوڑی دیر جاؤ دور مجھ سے، تھک گیا ہوں تمہیں دیکھ کے. یہ جو ہم نے سوچا نا ہمارے میاں میں دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، ذرا آج جا کے دل پہ ہاتھ رکھ کے روزہ کھول کے پوچھئے گا. وہ ایک مجھے یاد آ جاتی ہے بات، تو وہ واجبی شکل کے تھے دونوں، اچھے تھے، پیار بہت تھا ان کے اندر. تو وہ جب بیمار ہوتے تھے نا تو اپنی بیوی کو اپنے پاس سے نہیں اٹھنے دیتے تھے. ان کی بیگم کہا کرتی تھی ان کو بخار ہونے کے بجائے مجھے ہو جائے، اچھا وہی ہوا، بیمار ہوئے، اب 8 دن ہو گئے بیمار بیمار، ایک نہیں کہتے میں تھک گیا ہوں تمہیں دیکھ دیکھ کے چلی جاؤ یہاں سے، تھوڑی دیر مجھے اکیلا چھوڑ دو، تو انسان تھک جاتا ہے. تھوڑی جدائی محبت پیدا کرتی ہے. دیکھیے طویل جدائی محبت کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے، مختصر جدائی محبت کو بڑھا دیتی ہے. کبھی کبھی تھوڑی دیر جدا ہوں، 24 گھنٹے میاں بیوی ساتھ ہوں گے تو محبت ہی نہیں رہتی. یہ اللہ نے ایک فطری نظام رکھا ہوا ہے. جو مرد گھر سے نکلتے ہیں نا، یہ شام کو آتے ہیں تو بیویاں بھی انتظار کرتی ہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں گھر آ رہے ہیں. لیکن بعض وقت کام، جابس کی نوعیت، گھر سے کام کرنا، سارا دن دیکھتے ہیں تو تھوڑی دیر بیچ میں سے نکل جائیں، ان کو بھی کہیں جائیں مسجد میں نماز پڑھ کے میں بھی جا رہی ہوں، آپ فیل کریں گے کہ اس سے گھر اچھا ہوگا. تو یہ جو وہی بات ہے کہ ہر وقت گھر میں مسرور رہنا، یہ وہی بات ہے کہ پودے کو زیادہ بھی پانی دے دیں گے نا تو گل جائے گا. نہ بچوں کو ہر وقت ٹائم دیتے رہیں اور ہر وقت انہی کے لاڈ دیکھیں، پھر وہ بگڑ جائیں گے. اور میاں صاحب کو اگر آپ نے ایسی عادت ڈال دی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، آتے بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، تھوڑا سا آپ کو حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو بات ہے، یہ اللہ کے دین کی قیمت میں مسروریت، یہ بات الگ ہے. اس کے برعکس اب آپ اپنے مزاج کو خوشگوار کریں، اسمائلی فیس بنا کے گھر جائیں. قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کے چہرے اگر اسمائلی نہ ہوں تو گھر والے زیادہ دن نہیں چلتے ساتھ. وہ کہیں گے ایک تو آپ کے اب نخرے دیکھ رہے ہیں، گھر آپ کا صاف کیا، پیچھے یہ کیا، آتے ہی آپ کے نخرے. بیگمات بعد میں یہ سوچ لیتی ہیں کہ آئیں بھی ہم گھر میں اور میاں کھانا بھی صحیح پکا کے رکھیں، صفائی بھی ساری کر کے رکھیں، اور ہم آتے ہیں ان پہ روک بھی جھاڑیں. اسمائلی فیس سب کو اچھا لگتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ ہم مسرور دکھیں لیکن غافل نہ ہو جائیں چیزوں میں پڑھ کے. پھر اس کے بعد فرمائے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. آپ نے نوٹ کی ایک بات، اتنی جلدی میں کی نہیں ہوگی، جنتی جب جنت کا اپنا رزلٹ لے کر آئے گا تو وہ اپنے جنت والے گھر میں خوشی خوشی آئے گا، ہاں؟ اور جو جہنمی ہے وہ گھر والوں کے پاس دنیا میں اتنا مسرورا ہوتا تھا کہ آخرت میں جب اس کو ریزلٹ کارڈ ملے گا تو روئے گا. اب اس شعور کے لیے سنیے گا، میں دوبارہ یہاں سے آپ کے لیے پڑھتی ہوں. پھر جس کا عمل نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، وہ اپنے گھر والوں کی طرح خوش خوش پلٹے گا، کیونکہ آج پاس ہو گیا. دیکھا نا میں کہتا تھا، آپ کہتے تھے مجھے نہ پڑھو، دیکھو میرا پڑھنا آپ کو مشکل لگتا تھا، فائدہ ہو گیا. دیکھو میں نے کتنی چیزیں چھوڑ دی تھی، کھیل تماشے چھوڑے ہوئے تھے، آج دیکھو میں کتنی خوش ہوں. خوشی خوشی گھر والوں کو آپ بتائیں گے. اور ساتھ ہی کہا رہا وہ شخص جس کا نام ہے مال اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. کیوں؟ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا اسے کبھی پلٹنا نہیں. پلٹنا کیسے نہیں تھا، اس کا رب تو اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق واللیل اذا اتسق، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے. ہائی لائٹ کر لیں، وقت کا پہیہ رکے گا نہیں، چلتے ہی جانا ہے، چلتے ہی جانا ہے. بچپن جوانی میں آ گیا نا، جوانی ڈھلنی شروع ہو گئی نا، اب یہ ڈھلتی جوانی بڑھاپے کی طرف جائے گی، ہڈیاں کمزور ہوں گی، کمزوریاں آئیں گی، گھٹنوں میں دردیں شروع ہوں گے. کتنا فٹ رکھ لیں خود کو، یہ سارے مرحلے طے کرتے بڑھاپے سے موت، موت سے برزخ، اور برزخ سے پھر دوبارہ زندگی، دوبارہ زندگی سے میدان محشر، پھر حساب اور کتاب، پھر جزا اور سزا کی بے شمار منزلیں ہمارے راستوں میں بھی پڑی ہیں. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، پلیٹ کو بھی طباق کہتے ہیں عربی میں، اس طرح بھی لیئرز لگنی ہے. اور ہم کتنے مطمئن بیٹھے ہوئے، اتنا کچھ ابھی ہمارے ساتھ ہونے والا ہے اور ہمیں کوئی اس کی اتنی فکر نہیں دکھتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا، ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے تو سجدہ ہی نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ اپنے نام اعمال پہ جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. فبشرہم بعذاب الیم، خوشخبری سنا دو ان کو دردناک عذاب کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. کون سا؟ جو انہوں نے انتھک کوششوں کی صورت میں زندگی میں کیا تھا. دیکھیے کسان کے پاس وقت ہو بیج ڈالنے کا تو جتنے بیج آج ڈال رہا ہے چند مہینے میں اتنے ہی پودے اگ جائیں گے نا، اتنی فصل ہوگی. جس نے بیج ڈالنے کے وقت سستی اختیار کی، سو گیا، کھیلتا رہا، کودتا رہا، تماشوں میں پڑا رہا، کیا فصل کاٹنے کے دن اس کو کچھ ملے گا؟ تو آج یہ دنیا میری اور آپ کی کیا ہے؟ بیج ڈالو. آج بیج ڈالیں گے، کل فصل کاٹیں گے. آج بیج نہیں ڈال رہے تو وہاں کس چیز کی امید رکھیں گے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی ہدایت کی کوشش کرنے کی، کوششوں کو تیز کرنا کی توفیق دے دے. تلاوت سنتے اور اس کے بعد اینڈ میں انشاءاللہ ہم اس آیت پہ سجدہ بھی کریں گے، پھر دوبارہ اگلی سورہ شروع ہوگی.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بل إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم